ओम शांति। बाबा का अमूल्य रतन, अनुभवी रतन हमारे बीच में उपस्थित है, आदरणीय उषा दीदी जी। हम आपका आज की मौन तपस्या भट्टी की क्लास में बहुत 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 दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आदरणीय उषा दीदी जी को तो सब भी जानते होंगे, कोई है यहाँ जो नहीं जानते? सभी जानते हैं, क्योंकि सभी मधुबन जब आते हैं तो आपकी क्लास का तो हमें लाभ मिलता ही है, लेकिन मधुबन आने से पहले ही हम टीवी में तो रोज आपको सुनते ही हैं, पीस ऑफ माइंड चैनल पे आपकी क्लासेस हम सुनते रहते हैं। आपका लौकिक जन्म अफ्रीका में हुआ और अल्प आयु में ही आपको बाबा का ये ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। 1980 में 20 वर्ष की युवा अवस्था में ही आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में संपूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। अनेक सेवाएं यज्ञ में रहकर आपने की है, नागार्जुन फर्टिलाइजर में भी आपने अनेक कोर्स कराए और कंपनीज इंडस्ट्रीज में भी आपके अनेक कोर्सेज, सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप और स्ट्रेस फ्री लिविंग ऐसे कोर्स आप कराते रहते हैं। 1985 में भारत एकता युवा पद यात्रा जो बॉम्बे से दिल्ली तक निकली थी, उसका भी आपने कुशल नेतृत्व किया। भारत से बाहर अनेक देशों में भी आप बाबा की सेवा करते रहते और अनेक आत्माओं को बाबा के ज्ञान से लाभान्वित करते रहते हैं। तो ऐसे बाबा के विशेष बच्चे के लिए मैं कहूंगी कि ज्ञान की खान है आप, यज्ञ की शान है आप, ब्राह्मणों को गहराई में ले जाने का पूरे करते अरमान है आप, पूरे करते अरमान है आप। और ऐसी मौन तपस्या भट्टी में हम आपका अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज की क्लास का बहुत सुंदर विषय आदरणीय उषा दीदी जी से हम इस विषय पर स्पष्टीकरण सुनेंगे, एकाग्रता और तपस्या। अभी दीदी जी से सुनेंगे।
ओम शांति। मधुबन के इस बेहद के घर में मौन तपस्या करने का कितना सुंदर चांस मिला है। बाबा के महावाक्य याद आते हैं कि एक समय आएगा जब मधुबन किला बन जाएगा, कि जिस किले के अंदर कोई भी अशुद्ध आत्मा प्रवेश तक नहीं कर पाएंगी। जब से ये भट्टियां आरंभ हुई है, ये महसूस आती है कि सचमुच में बाबा के वो महावाक्य साकार हो रहे हैं। हर ग्रुप के मौन तपस्या जैसे ऐसा पावरफुल लाइट का किला बनाता जा रहा है मधुबन को, कि जो आगे चल करके दुनिया के अंदर मॉडल बनेगा या लाइट हाउस बन जाएगा या अनेकों के लिए एग्जाम्पल बन जाएगा। तो आप सबके वाइब्रेशंस से ये बाबा के महावाक्य साकार हो रहे हैं। जब मधुबन में ऐसी तपस्या भट्टी चलती है तो तपस्या और एकाग्रता का आपस में बहुत गहरा संबंध है। ये शब्द जब तपस्या सुनते हैं तो भक्ति मार्ग में भी कुछ शिरोमणि भक्तों ने तपस्या की है, और तपस्या शब्द याद आते ही अगर कोई भी भक्त ने तपस्या की, चाहे हम सभी पढ़ते हैं कि ध्रुव ने तपस्या की थी, तो तपस्या करते हुए कौन सा स्वरूप हमारे सामने आता है। तपस्या में सबसे पहला दृढ़ संकल्प, धारी बनना। जैसे ध्रुव ने तपस्या की तो दृढ़ संकल्प धारी बन गया, और उस दृढ़ संकल्प में इतना अडिग हो गया, हठ लेकर के उसने उस तपस्या की, जिसको बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि तपस्या माना दृढ़ता संपन्न अभ्यास करना। दृढ़ता की शक्ति हमारे अंदर हो और उस दृढ़ता की शक्ति से या दृढ़ संकल्प हम जब ले लेते हैं और उस पर अभ्यास करना आरंभ करते हैं तो यही हमारी तपस्या है। दूसरा, तपस्या का मतलब है लगन, कि ऐसी लगन को उसने प्रज्वलित किया कि माना जो संकल्प से उसने वो तपस्या आरंभ की तो वो लगन उस तपस्या को संपूर्ण बनाता है। तो लगन इतनी प्रज्वलित होनी चाहिए तपस्या में, क्योंकि लगन से ही मगन होते हैं और मगन से ही अगन प्रज्वलित होती है। तो बाबा ने भी जो हमें ये तपस्या दी हुई है, ये तपस्या में हम ऐसी अग्नि को प्रज्वलित करते हैं कि जिस अग्नि से हमारे कई जन्मों के विकर्म विनाश होते हैं, आत्मा का शुद्धिकरण होता है, और इतना ही नहीं लेकिन लगन माना ही कि इतना निकटता का संबंध ईश्वर के साथ जोड़ लेना, अपनत्व की भावना जिसमें आ जाए। जैसे दुनिया के अंदर भक्त और भगवान की भावना वो बहुत दूरी क्रिएट करती है, लेकिन बाबा के साथ हमारा सर्व संबंध होने कारण ये लगन को क्रिएट करना आसान है। दुनिया में भी जब किसी के घर में लगन होता है तो क्या कहते हैं, हमारे घर में लगन है, यानी एक रिश्ता फाइनल हो रहा है, उसमें आप सभी पधारना। तो हमारा तो रिश्ता इतना गहरा है बाबा के साथ, सर्व संबंधों का रस हम उस बाबा से अनुभव करते हैं, इसीलिए लगन नेचुरल हो गई हमारी। और जहां वो रिश्ता गहरा हो तो मगन होना कौन सी बड़ी बात है, वो याद टूटती नहीं है, वो अजपाजाप जैसे अंदर ही अंदर हमारी याद बनने लगती है, ये है मगन अवस्था। और तब जाकर के अग्नि प्रज्वलित होती है, या जिसको हम दूसरे शब्द में कहे ज्वाला स्वरूप, तो ज्वाला प्रकट होने लगती है और वो ज्वाला अंदर की सारी अशुद्धियों को जला देती है, सारी कमजोरियों को जला देती है और आत्मा के स्वरूप को निखारने लगती है, निखार आने लगता है। तो इसीलिए कहा तपस्या माना दृढ़ संकल्पधारी बनना, और दृढ़ संकल्प के साथ लगन को जोड़ देना। जब दृढ़ संकल्प और लगन जुड़ जाए तब रियल तपस्या आरंभ होती है, नहीं तो यही जो शिकायत हमारी होती है कि मधुबन जाते हैं बाबा के कमरे में बैठ करके हमने दृढ़ संकल्प लिया लेकिन वापस जाने के बाद धीरे धीरे वो दृढ़ संकल्प हमारा ढीला हो गया और कुछ दिन के बाद तो हवा हो जाता है, भूल भी जाते हैं और लगता है कि बाबा के कमरे में संकल्प किया था फिर भी नहीं कर पाए। उसका कारण यही है कि दृढ़ संकल्प के साथ लगन की अगन जरूरी है, तब होगा। तीसरा, जब तपस्या करते हैं तो तपस्या शहर में नहीं होती है, भीड़ में नहीं होती है, तपस्या के लिए एकांत चाहिए। इसीलिए ध्रुव या जो भी तपस्वी है जंगल में चले गए उस एकांत के लिए। एकांत चाहिए और एक नामी होना चाहिए और अंतर्मुखता की धारणा चाहिए। तो बिना अंतर्मुखता के तपस्या नहीं हो सकती है। अंतर्मुखी ही अंतर्मुखता की गुफा में जब बैठ जाते हैं तो वो गुफा में ही रियल तपस्या होती है। गुफा माना बाहर की दुनिया से डिटैच, बाहर की दुनिया से गुफा में बैठ गए माना बाहर की दुनिया से हमारा कोई लेना देना नहीं। देह की दुनिया, देहधारियों की दुनिया से हमें कोई लेना देना नहीं। इसीलिए बाबा कहते जब तपस्या करो तो अंतर्मुखता की गुफा में चले जाओ, अंदर जाओ, भीतर जाओ। अंतर्मुखता क्यों कहते हैं? अंतर्मुखी बनना माना खाली मुख का मौन नहीं, अंतर्मुखी बनना माना मन का भी मौन। मुख जब कहते हैं तो मुख के ऊपर अधिक सारी इंद्रियां दिखाई देती हैं, सोचने की, देखने की, बोलने की, सुनने की, ये सारी इंद्रियां फेस पर है। तो अंतर्मुखी बनना माना ये सारी इंद्रियों को भी बाह्य दुनिया से भीतर ले जाना, भीतर कर देना, उसको अंदर कर देना, कि बाहर की दुनिया से डिटैच, न्यारा हो जाना। जब ऐसी अंतर्मुखता की गुफा में हम बैठेंगे तब रियल एकांत का अनुभव कर सकेंगे। बाह्य मुक्ता में जितना होते हैं तो एकांत नहीं है, और इसीलिए व्यर्थ संकल्प अधिक चलते हैं। लेकिन जब हम अंतर्मुखता की गुफा में आ जाते हैं, एक के अंत में समा जाते हैं, बाहर की दुनिया से, बाहर की बातों से जब न्यारे हो जाते हैं, जैसे हलवा ने किनारा छोड़ दिया, ऐसी स्थिति जब बन जाती है तो व्यर्थ चल नहीं सकता है। ये जो हमारी शिकायत होती कि व्यर्थ चलता है, व्यर्थ नहीं चलता। व्यर्थ तभी चलता जब कोई न कोई इंद्रिया बाहर की ओर है, वो दरवाजा खुला है। इसीलिए मुख के मौन के साथ साथ मन का मौन रखने के लिए क्यों कहते तपस्या के लिए, ताकि सारे दरवाजे हम बंद कर दे और भीतर अपने आप में उस एक के अंत में, सोल कॉन्शियसनेस में, आत्मा अभिमानी स्थिति में अपने आप को स्थित करते हुए फिर एक के अंत में हम खो जाए। तो ये अंतर्मुखता तपस्या का विशेष आधार है। और जैसे ये अंतर्मुखता आई, मुख का मौन मन का मौन, इसलिए कहा खाली मुख का मौन नहीं, आंखों का भी मौन, कानों का भी मौन, मन का भी मौन। ऐसी जब भीतर ले चलो स्थिति हो, तब जाकर के रियल तपस्या आरंभ होती है, तब रियल तपस्या हो। तो इसीलिए कहा लोग जंगल में जाते हैं तपस्या करने के लिए, उस एकांत को प्राप्त करने के लिए। लेकिन जंगल में चले जाए, लेकिन अगर सारे दरवाजे खुले हैं तो तपस्या प्रैक्टिकल नहीं है। तो हमारे लिए तो भले रहना है घर गृहस्थ में, बाबा ने कहा आपको भागना भी नहीं है वहां से, वही रहना है, लेकिन फिर भी हम तपस्या कर सकते हैं, क्योंकि अंतर्मुक्ता की गुफा में हमें जाना आता है। ये हमारी जो प्रैक्टिस है, उस प्रैक्टिस को हमें बढ़ानी है। इसीलिए अंतर्मुखता खाली गुफा नहीं होती है, लेकिन अंतर्मुखता का प्रयोग जब करते तो कहते अंडरग्राउंड हो जाओ। साइंटिस्ट लोग जब कोई रिसर्च करते हैं अंडरग्राउंड चले जाते हैं, ताकि रिसर्च हो सके, उसकी गहराई में जा सके। तो तपस्या माना गहराई में जाना, रिसर्च, रियलाइजेशन करना अपना, और ये रियलाइजेशन करने के लिए अंडरग्राउंड होना, यानी बाह्य दुनिया से अंडरग्राउंड चले जाना बहुत आवश्यक। तीसरा अंतर्मुखता माना, कुछ दिन पहले बाबा की मुरली में आया था कि अंतर्मुखता माना सागर के तले में चले जाना। क्योंकि जब कोई व्यक्ति सागर के तले में जाता है, तभी भी बाह्य दुनिया से कट ऑफ हो जाता है। जो तैरक होते हैं, समुद्र में तैरने वाले डाइवर्स जो होते हैं, वो जहाज में जाते हैं और फिर वहां से डाइव करते हैं, और जब डाइव करते हैं तो बाहर की दुनिया से इस तरह कट ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि एक अलग दुनिया में प्रवेश करते हैं, एक ऐसी दुनिया की खोज करने के लिए वो डाइव मारते हैं। और जब उस समुद्र के तले की चीजों को देखना शुरू करते हैं, उसमें ऐसे खो जाते हैं कि उन्हें समय का भी एहसास नहीं होता है कि कितना टाइम बीत गया है। इस तरह की एक समुद्र के तले में चले जाते हैं। जब ऊपर वाले रस्सी खींचते हैं, भाई इतना टाइम हो गया अब तो ऊपर आओ, तब जाकर के वो ऊपर, अच्छा इतना समय हो गया। तो ऐसे अंतर्मुखता की गुफा में जाना, अंतर्मुखता माना अंडरग्राउंड होना, और अंतर्मुखता माना सागर के तले में चले जाना। ये अंतर्मुखता जब हमारे अंदर विकसित होती है, और इस तरह से बाह्य दुनिया से हम अपने आप को न्यारा कर लेते हैं, तब जाकर के रियल तपस्या आरंभ होती है। अगर बुद्धि योग बाह्य दुनिया में ही भटक रहा है तो अंतर्मुखता में नहीं जा सकते, तपस्या नहीं हो सकती है। तो तपस्या माना दृढ़ संकल्पधारी बनना, तपस्या माना लगन की अगन को प्रज्वलित करना, और तपस्या माना अंतर्मुखता की गुफा में चले जाना, तब रियल एकांत अनुभव कर सकते हैं। और उसके बाद उस तपस्वी का स्वरूप देखो, और क्या दिखाई देता है, और क्या नजर आता है, और भी कुछ मिसिंग है, और क्या रह गया है, एक चीज और रह गई, बाहर की प्रकृति का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। बाहर की प्रकृति का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके अंदर एक वैराग्य वृत्ति जागृत कर दी है। तो इसीलिए बाबा भी हम बच्चों को कहते, बच्चे बेहद की वैराग्य वृत्ति को जागृत करो, कि जब हमें भी तपस्या करनी है और अगर बेहद का वैराग्य नहीं है तो रियल तपस्या नहीं हो सकती है। तो इसीलिए इतना अपने आप को बाहर की प्रकृति से या अपने अंदर की प्रकृति से, दोनों प्रकृति से डिटैच करना है, कि उस समय कोई स्वभाव संस्कार भी हमारा बीच में विघ्न रूप न बने। तपस्या इस तरह की हो कि विघ्न क्रिएट न। अगर बार बार विघ्न आता है तो माना कहीं न कहीं वैराग्य वृत्ति की कमी है। इसीलिए अपने ही स्वभाव, अपनी प्रकृति विघ्न क्रिएट करने वाली बनती है। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति और तपस्या, माना और क्या दिखाई देता है, त्याग और और एकाग्रता, एकाग्रता पूर्ण अभ्यास करना। इतनी शारीरिक एकाग्रता आ जाती है उनके अंदर, इतनी एकाग्रता से वो अभ्यास करना चालू करते, तपस्या करना चालू करते हैं, कि जैसे भक्ति के अंदर दिखा है कि जो तपस्वी लोग तपस्या करते थे, चारों ओर क्या हो जाता था, पहाड़ खड़े हो जाते थे तो भी उनको पता नहीं चलता था, धूप आई, बरसात आई, हवा आई, कुछ भी तूफान आया, कोई भी चीज उनको अंदर से हिला नहीं सकती थी। इतनी एकाग्रता पूर्ण अभ्यास, वो रियल तपस्या होती। जब एकाग्रता की बात करते हैं तो कितने प्रकार की एकाग्रता चाहिए, कितने प्रकार की एकाग्रता चाहिए, पांच प्रकार की एकाग्रता चाहिए। तपस्या की पांच बातें हमने देखी, और एकाग्रता भी पांच प्रकार की एकाग्रता जरूरी है, तभी रियल एकाग्रता पूर्ण अभ्यास होता है हमारा। सबसे पहली एकाग्रता स्थूल बाह्य शारीरिक एकाग्रता, बार बार हिलते डोलते रहेंगे हिलते, तो ये बताता है अंदर उसका मन कितना हिल रहा है, क्योंकि अंदर का ही प्रभाव तो बाहर है। इसलिए बाबा कई बार मुरली में, साकार मुरली में ये बात कहते हैं कि जब बाबा कई बच्चों को देखते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं, तो बाबा समझ जाता है कि उसका बुद्धि योग बाहर भटक रहा है, एकाग्रता नहीं है। तो शारीरिक एकाग्रता में चाहे शरीर की हर कर्मेंद्रिय एक ही पोजीशन में हो, इतनी एकाग्रता पूर्ण अभ्यास हो हमारा, कोई भी कर्मेंद्रियां हलचल में न हो, चाहे दृष्टि हो, कान हो, 10 बातें मुझे सुनाई दे, इधर उधर बार बार दृष्टि जाती रहती है, कौन आया, कौन गया, क्या हो रहा है, क्या बात चल रही है, तो तपस्या नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले अगर मुझे रियल तपस्या करनी है, उसका अनुभव करना है, तो शारीरिक एकाग्रता, कर्मेंद्रिय के डिसिप्लिन, मेरी हर कर्मेंद्रिय मेरे डिसिप्लिन में हो। इसीलिए दुनिया में भी कहते, जब कोई किसी की याद में खो जाता है, कल बाबा की मुरली बहुत अच्छी, बाबा ने कहा योग माना क्या, माशुक को याद करना, आशुक माशुक को याद करते हैं, यही तो योग है, कितना सिंपल बताया है ना। और दुनिया में जब एक आशिक माशुक को याद करते हैं और उसके याद में जब खो जाते हैं, तो कोई पास में से गुजर जाए, उसको पूछे यहां से कोई गया, तो कहेंगे पता नहीं, अरे आंखें खुली है, यहीं बैठे हैं, अगर कोई एक पोजीशन में ऐसे बैठे हैं तो ऐसे ही बैठे रह जाते हैं। जब होश आता है, कोई आकर के उस ध्यान को तोड़ता है, तब आता है कि हाथ में खाली सुन्न हो गया, हाथ सो गया। यानी उस एकाग्रता में ये भी पता नहीं चला कि मेरा हाथ सो गया है, मेरा पैर सो गया है, ये होश से भी ऊपर, ये है शारीरिक एकाग्रता। कि जहां ऐसी एकाग्रता हो कि मैं किस पोजीशन में बैठी हूं, ये ध्यान भी ना आए मुझे, बाद में रियलाइजेशन, जब उस ध्यान से नीचे आते तब रियलाइजेशन होता है कि हाँ पैर सो गया मेरा, फिर थोड़ी देर बैठ के उसको वापस ब्लड सर्कुलेशन को ठीक। ये है शारीरिक एकाग्रता। शारीरिक एकाग्रता अगर है तो फिर मन की एकाग्रता को ले आना सहज है। अगर शरीर ही हिलता डोलता रहता है तो मन को एकाग्र करना बड़ा मुश्किल है। मन मना भाव होना मुश्किल हो जाता है। तो मानसिक एकाग्रता का मतलब विचार भी हमारे डिसिप्लिन हो जाए। विचार शून्य हम नहीं बनते हैं, लेकिन एक ही विचारों के या मनन चिंतन करते हुए उस विचार का स्वरूप बनने लगते हैं, वो फील करने लगते हैं, विचारों से वो फील करने लगते हैं। तो मानसिक एकाग्रता माना जहां मन के संकल्प बहुत स्लो प्रोसेस में चलता हो, और क्योंकि दुनिया में भी आप देखेंगे जितना आपका मन फास्ट चलता है, तो फास्ट चलने से क्या होगा, बेचैनी महसूस होगी, रेस्टलेसनेस अनुभव होती है, मन बहुत तीव्र गति से चल रहा है इसलिए। लेकिन जब मानसिक एकाग्रता होती है तो विचारों की गति बहुत शांत होने लगती है, स्थिर होने लगती है, और उन संकल्पों को फील करते हुए उस स्वरूप में जाकर के हम टिकने लगते हैं। संकल्प सुव्यवस्थित चलते हैं, ये नहीं कि अभी इधर का संकल्प, अभी इधर का, अभी निराकार स्वरूप का, अभी फरिश्ता स्वरूप का, सारा जैसे एक साथ मुझे अनुभव करना, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। मन की एकाग्रता माना आप एक लक्ष्य ले लो, मन को लक्ष्य दे दो, और जब मन को लक्ष्य दे देते हैं कि आज मुझे फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करना, तो उस फरिश्ता स्वरूप में ही धीरे धीरे हम मन को ले जाते हुए फील करते हैं और उस स्वरूप को महसूस करने लगते हैं। तो इसीलिए मन मना भव होना या एक बाबा की याद में मन को समा लेना, तो उसके लिए मन को पहले लक्ष्य देना आवश्यक है। फाइनल कर लो कि मुझे आज कौन सी स्थिति में बैठना है। क्या निराकार स्थिति में बैठना है, फरिश्ते स्वरूप में बैठना है, ब्राह्मण जीवन के सौभाग्य को अनुभव करना है, कोई एक स्वमान को लेकर के बैठ करके उसकी गहराई में जाना है। लक्ष्य दे दो अपने मन। वैसे प्रतिदिन आपको सुबह में स्वमान दे करके मन को एक लक्ष्य दिया ही जाता है, लेकिन उस स्वमान में हम कितना टिक पाते हैं? दिन भर के लिए अगर वो स्वमान मिला तो उस स्वमान को योग में तो अनुभव करो सबसे पहले। उस स्वरूप क्या होता है, उसकी अनुभूति क्या होती है, ये महसूस करो। ये है मानसिक एकाग्रता। फिर तीसरी एकाग्रता है बौद्धिक एकाग्रता, बुद्धि विचलित ना हो, बुद्धि जैसे दुनिया में कहते हैं, दादी जान की बहुत अच्छी बात ये कई बार सुनाती है कि हम देखें हमारी महीन बुद्धि कितनी है, मोटी बुद्धि। कई बार इसीलिए बाबा दुनिया के शब्दों में भी साकार मुरली में कहते हैं कि बंदर बुद्धि है, भैंस बुद्धि है, मोटी बुद्धि, कौन सी बुद्धि है? यह महीन बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि है हमारी। और बुद्धि को महीन करने के लिए, महीन बुद्धि बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मनन चिंतन भी करो और साथ में बुद्धि को महीन करने के लिए निश्चयात्मक बुद्धि होनी चाहिए, नहीं तो वो बंदर बुद्धि ही बनी रहेगी, भटकती रहेगी, क्योंकि निश्चयात्मक नहीं है। तो जब हमारी बुद्धि निश्चयात्मक बुद्धि बन जाती है, निश्चय है, जैसे मन को एक लक्ष्य दे दिया, तो उसमें स्थिर होना आसान है। साथ ही साथ निश्चयात्मक बुद्धि बनना कि मैं ये बन सकती। अगर मन को लक्ष्य दिया स्वमान दे करके, लेकिन बुद्धि अंदर निश्चयात्मक नहीं है, पता नहीं मैंने लक्ष्य तो दे दिया लेकिन मैं ये अनुभव कर पाऊंगी या नहीं, संशय बुद्धि है ना, तो बुद्धि निश्चयात्मक ही नहीं है तो क्या अनुभव हो गया? इसलिए लक्ष्य के साथ साथ मनन चिंतन करते हुए निश्चयात्मक बुद्धि बन जाना, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप में विश्वास रखना कि मैं ही ये बनूंगी, मैं ही ये कर सकती, मुझे ही करना है, हुआ ही पड़ा है। इसीलिए बाबा कई बार हम बच्चों को कहते हैं होगा नहीं होगा ये संकल्प विकल्प में नहीं आओ, ये दुविधा वाली स्थिति में नहीं आओ, निश्चयात्मक बुद्धि बन जाओ। जब निश्चयात्मक हो जाएंगे तो उसकी महीनता में जाना आसान हो जाएगा। अगर निश्चय का फाउंडेशन नहीं है तो असंभव। तो मन को लक्ष्य तो मिल गया, स्वमान दे दिया, लेकिन बुद्धि निश्चय नहीं कर पा रही है। मास्टर सर्वशक्तिमान ये लक्ष्य दे दिया, संकल्प स्वमान दे दिया, लेकिन बुद्धि में अंदर में डर है, डर का संस्कार है, तो बुद्धि क्या कहते है? पता नहीं मैंने ये स्वमान तो लिया है लेकिन अंदर में एक भय है, मैं बन पाऊंगी नहीं बन पाऊंगी। तो जहां बौद्धिक एकाग्रता नहीं है, अपने में निश्चय नहीं, विश्वास नहीं है, तो वो एकाग्रता बिल्ड ही नहीं होती है तो एकाग्रता कहाँ से आएगी। एकाग्रता का कोई भी एक फाउंडेशन कच्चा है तो हमारी एकाग्रता बनेगी नहीं, इतना याद रखिएगा। इसलिए बौद्धिक एकाग्रता के लिए निश्चयात्मक बुद्धि बनना आवश्यक है। जितना निश्चय बुद्धि विजय तो उस लक्ष्य को प्राप्त करना आसान है। इसलिए दोनों का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है, मानसिक एकाग्रता और बौद्धिक एकाग्रता का आपस में बहुत गहरा संबंध है। फिर चौथी एकाग्रता, कौन सी? शारीरिक एकाग्रता, मानसिक एकाग्रता, बौद्धिक एकाग्रता और फिर है भावनात्मक एकाग्रता। कि जो आपने लक्ष्य लिया, संकल्प लिया, निश्चयात्मक बुद्धि बनना उतना नहीं लेकिन भावनाओं को साथ में जोड़ना, फीलिंग्स को साथ में जोड़ना, उस अनुसार फीलिंग्स अपने अंदर क्रिएट करना। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं तो उस अधिकार को फील करना, और साथ ही साथ जैसे उस स्वरूप को महसूस करते हुए आगे बढ़ना। दृश्य क्लियर हो अगर मेरे सामने कि जो मैंने संकल्प किया उसको फील करते हुए मुझे आगे बढ़ते जाना है, फरिश्ता स्वरूप मुझे बनना है। लेकिन फरिश्ता माना वो लाइटनेस फील ही ना हो, हल्कापन महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि भावनाओं में कई प्रकार का बोझ है, भरा हुआ है, कई प्रकार के पिछले कर्मों का गिल्ट अंदर में भरा हुआ है। ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फिर 5000 साल के बाद ऐसा होगा, है ना? वो चीज जैसे बार बार डिस्टर्ब कर रही है। खास करके कई बार कई लोग हमें कहते हैं ड्रामा का ज्ञान जो है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब बाबा ये कहता है ना हूबहू 5000 साल के बाद रिपीट होगा, बस ये चीज जो है ना, ये बार बार क्या करता है अंदर में, वो भावनाओं को कमजोर कर देता है और यही बार बार अंदर में इमर्ज होता है 5000 साल के बाद फिर ऐसा होगा, मेरे साथ ही होगा और ये सब वापस मुझे उस सब से गुजरना पड़ेगा। अरे 5000 साल बाद है ना, 5000 साल अभी से उसकी चिंता क्यों कर रहे हैं? और तब याद भी नहीं होगा, जैसे अब याद नहीं है कि 5000 साल पहले क्या हुआ था, जिसमें से गुजरे थे, याद है क्या? तो क्यों उसको लेकर के हम चिंता करने लग जाए और वो भावनाओं को कमजोर कर दें? मेरे से होने वाला ही नहीं है, बड़ा असंभव है, बहुत मुश्किल है, अगर ये सब कुछ 5000 साल के बाद फिर से मुझे जाना पड़ेगा, ये गिल्ट, हाँ? मैं परमधाम में ही बैठा रहूं, उससे तो अच्छा है कि ऊपर ही बैठा रहूं, है ना, मोक्ष ही अच्छा है, लेकिन ये तो एक कायरता है ना, फिर कायरता है। तो इसीलिए 5000 साल बाद जो होना होगा होगा, है ना, लेकिन भाई टीचर ने कहा तो नहीं ना कि इतना ही मार्क्स आना है, कहा है क्या? रिपीट हो रहा है तो क्या हुआ, वो तो हो गया, उसके साथ ड्रामा है ना, भविष्य के साथ ड्रामा थोड़ी है, वो तो भावी है, भावी आपके हाथ में है, भावी आपके हाथ में है ना, क्योंकि आपको पता नहीं है कि 5000 साल पहले क्या था, तो कैसे पहले से हम जज कर ले कि मेरे 50% या मैं फेल ही होने वाली हूँ। 5000 साल पहले भी मैं फेल हुई थी, इस बार भी मैं फेल होगी, देखना अब क्या होगा। अब ड्रामा में पता ही नहीं है ना, क्या मालूम आप डिस्टिंक्शन से पास हुए हो, क्या मालूम। तो फिर क्यों ये अंदर में कमजोर संकल्प के आधार पर कमजोर होते। तो हमारी भावनाएं जो कमजोर होती है ना, वो जब हम ड्रामा के ज्ञान का रॉन्ग एप्लीकेशन करते हैं, रॉन्ग एप्लीकेशन। आज साइंस में कोई स्टूडेंट है, उसको बताया कि 2 मात्रा की हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिला करके वाटर बनेगा, लेकिन 2 मात्रा हाइड्रोजन की होनी चाहिए, 1 मात्रा ऑक्सीजन की होनी चाहिए। ये प्रोपोर्शन है ना, ये प्रोपोर्शन है। लेकिन अगर वो कहे कि नहीं, मैं तो 1 मात्रा ही हाइड्रोजन की लूंगी और 2 मात्रा ऑक्सीजन की लेकर के देखूं, ये ट्राई करूं, रिजल्ट मिलना ही नहीं है। रॉन्ग एप्लीकेशन है। जिसकी जितनी मात्रा है उतना ही लेना पड़ता है, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर रॉन्ग एप्लीकेशन किया जाए तो आप और भी कंफ्यूज्ड होंगे, आपको रिजल्ट मिलना नहीं है। और जब रिजल्ट नहीं मिलेगा तो क्या होगा, व्यर्थ कितना चलेगा कि मैंने प्रयोग किया मुझे मिला नहीं। रॉन्ग एप्लीकेशन था ना भाई, 2 मात्रा हाइड्रोजन की, 1 मात्रा ऑक्सीजन की। आप 1 मात्रा हाइड्रोजन की 2 मात्रा ऑक्सीजन की लेंगे तो क्या मिलने वाला है। तो रॉन्ग एप्लीकेशन जहां होता है वहां पर कभी भी आपको रिजल्ट यथार्थ नहीं मिलता है। तो ड्रामा के ज्ञान का एप्लीकेशन भावी के साथ नहीं है, भावी आपके हाथ में है। ड्रामा का एप्लीकेशन पास्ट के साथ। बिंदी लगाओ, जो हो गया सो हो गया, ड्रामा फुल स्टॉप, आगे बढ़ो। भावी आपके हाथ में है, और क्योंकि आपको पता नहीं कि 5000 साल पहले क्या हुआ, तो अब आप ये अप्लाई करके बैठ जाओ कि नहीं, मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है ना, मैं जानती हूं ना, तो क्या होना है। इसलिए भावी के साथ उसका एप्लीकेशन नहीं है, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जो आप लक्ष्य रखते हैं वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए भावनाओं में जो अनेक प्रकार की पास्ट की बातें हैं पकड़ के रखी हुई, गिल्ट है जो कई बातों का अफसोस अंदर में पकड़ के रखा है, उन सबको ड्रामा हो गया, बीती सो बीती, उसको चितवो नहीं। ये बाबा कहते, बीती सो बीती, उसको चितवो नहीं, बार बार उसको चितवो नहीं, अंदर में अपनी भावनाओं में उसको इमर्ज नहीं करो। तो भावनात्मक एकाग्रता लाने के लिए ड्रामा का फुल स्टॉप लगाना बहुत जरूरी। अगर फुल स्टॉप नहीं लगा सके तो फिर आप योग में जो रियल तपस्या करना चाहते हैं वो नहीं मिलेगी आपको। तो मानसिक एकाग्रता, बौद्धिक एकाग्रता और भावनात्मक एकाग्रता, इन तीनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। भावनाओं में पॉजिटिव फीलिंग्स, शुद्ध फीलिंग्स, प्योर फीलिंग्स, जितनी शुद्ध और सकारात्मक भावनाएं हैं उतना आपका योग या आपकी तपस्या बहुत सुंदर होगी। जितनी नकारात्मकता, गिल्ट, अफसोस, ये बातें अगर समाई हुई है भावनाओं में, पिछली बातों को हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, उसको पकड़ के रखा है भावनाओं में, उन फीलिंग्स को पकड़ के रखा है, तो कभी भी भले मन को लक्ष्य दे दिया, निश्चयात्मक बुद्धि भी है, लेकिन फिर भी ये शिकायत, मेरा योग नहीं लगता है। इसलिए कई ब्राह्मणों को हम देखते हैं भाई, मन के अंदर लक्ष्य भी दे देते हैं, शुद्ध संकल्प भी दे रहे हैं, स्वमान भी रोज रोज स्वमान भी देते हैं अलग अलग, नवीनता बनी रहे। निश्चयात्मक बुद्धि है कि हाँ मैं आत्मा हूँ और मेरा बाबा है, निश्चय भी है, लेकिन भावनाओं में कुछ पुरानी बातें अभी तक पकड़ी हुई है। जब पकड़ी हुई है तो क्या होगा, योग लगेगा नहीं लगेगा। इसलिए उसको छोड़ो, छोड़ो उसको, उसको छोड़ दो। और 5000 साल के बाद पकड़ना, उसको पकड़ना भी हो तो अब नहीं पकड़ना है, वो पुरानी बातें छोड़ दो उसको। पिछले जन्म की बातें हो गई मेरे लिए, उसको छोड़ दो। हैं? बार बार पकड़ते रहेंगे, बार बार पकड़ते रहेंगे और उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए भावनात्मक एकाग्रता जब बनती नहीं है हमारी तो योग लगता नहीं है। निश्चय बुद्धि है हम भाई, 25 साल से चल रहे हैं तो निश्चय बुद्धि है, तभी तो चल रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर शिकायत है मेरा योग नहीं लगता है तो इसका कारण क्या? भावनाओं में कुछ बातें पकड़ी हुई है, कुछ कड़वाहट अंदर में उन भावनाओं में ऐसा मिक्स हो गया है जो छूट नहीं पा रही है, इसीलिए योग नहीं लग रहा है। तो जब योग ही नहीं लगता है तो क्या होता है फिर? हाँ, संघर्ष करना नहीं है। 25 साल हो गया ज्ञान में संघर्ष करते करते, अब संघर्ष भी करना छोड़ दिया तो फिर फाइनल क्या होता है? नींद आ जाती है। इसलिए 25 साल के बाद लोगों को योग में नींद जरूर आती है। क्या करें, योग में आनंद नहीं आ रहा है। हाँ, सिल्वर जुबिली हो गई भाई, अभी तो हम इतने पक्के हो गए लेकिन फिर भी हमें नींद क्यों आ रही है? योग में बैठते ही नींद आते हैं। हमारे निश्चय में कमी नहीं है, मन के अंदर मन मना भाव होना भी आता है और कहीं जाना भी नहीं है, ये भी अंदर में पक्का है कि बस बाबा को हमने पहचान लिया ना, कहीं नहीं जाना है। लेकिन अभी तक यही शिकायत, मेरा योग ही नहीं लगता है, क्या कहें? उसका कारण है भावनाओं में जो बातें हैं। तो ये भावनाओं का शुद्धिकरण करना जरूरी है, भावनाओं का शुद्धिकरण करो उन बातों को। हैं? क्या भय भी उस भावना में मिक्स हो रहा है? भय का जो संस्कार है वो मिक्स हो रहा है भावनाओं में, इसलिए कर रहे हैं लेकिन एक डर है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मेरे से होगा कि नहीं, तो भावनाओं में वो मिक्सचर हो रहा है। और जब भावनाओं में ये मिक्स, तो भावनात्मक एकाग्रता हमारी बनने नहीं दे रहा है, और भावनात्मक एकाग्रता ही नहीं है तो रिजल्ट क्या है? योग नहीं लगता है। इसीलिए निश्चयात्मक बुद्धि होकर के बैठे, ज्ञान भी सुन रहे हैं, रोज मुरली क्लास भी कर रहे हैं, रोज एक्यूरेट अमृत वेला कभी मिस नहीं करते हैं, लेकिन बैठते ही नींद आ जाती है। संघर्ष करते करते थक गए ना, अभी थक गए। हाँ? हम दवाई लेते इसलिए ऐसा हो रहा है। अरे दवाई का कोई मतलब नहीं है। कई लोग कहते हैं हम बूढ़े हो गए ना, अभी बूढ़े हो गए। ब्रह्मा बाबा 60 साल के बाद शुरू किया, 90 साल में बाबा को कभी नींद आई? बाबा का कोई भी चित्र देखो, अर्ध पद्मासन लगा करके ऐसा टार होकर के बैठा है, कभी बाबा को ऐसे देखा नहीं? अगर बाबा बूढ़ा था तो हमसे ज्यादा बूढ़ा था बाबा, तो 93 इयर्स की एज थी, हम में से यहाँ किसी की भी एज 93 नहीं होंगी। तो ये जो हम कहते हैं कि भाई अभी एज हो गई ना, नींद आना स्वाभाविक है, तो बाबा को क्यों नींद नहीं आई? ये सवाल पूछे, बाबा को क्यों नींद नहीं आई? हाँ, हमें क्यों नींद आ रही है? शरीर बूढ़ा, तो बाबा का शरीर बूढ़ा नहीं था क्या? तो हम मन से जवान नहीं मान रहे हैं क्या अपने को? हाँ, अच्छा 12 साल की है बस, तो माना 12 साल वाले को माफ है ऐसा नींद आना? हाँ, तो 12 साल की हूँ ये माने हम, अच्छा फिजिकल एज न देख करके ये माने कि मैं ज्ञान में कितना साल हूँ। तो ये एज को अगर देखेंगे, ज्ञान की एज को देखेंगे, तो फिर शायद नींद नहीं आवे। मेन बातें हैं जो भावनाओं में बातें पकड़ी है ना, इसलिए बाबा कई बातें कहते, छोड़ो तो छूटे, छोड़ो। बाबा ने एक धक से सब छोड़ दिया, इसीलिए छूट गई वो पुरानी बातें जो थी, वो पुरानी फीलिंग्स जो थी, दैहिक फीलिंग्स जो थी, वो सब छूट गई। तो भावनात्मक एकाग्रता को एस्टैब्लिश कर सके, और जब ये शुद्ध भावनाओं को एस्टैब्लिश कर दिया अंदर में, मैं शुद्ध स्वरूप हूं, यही मेरी वास्तविकता है, ये भावनाओं को, प्योर फीलिंग्स को इमर्ज करो, प्योर भावनाओं को इमर्ज करो, फिर देखो आपका योग लगता है कि नहीं। खुशी की फीलिंग्स को इमर्ज करो, बुरे हूं ये क्यों भावनाओं में आ जाए, मेरा शरीर बुरा है ये भी क्यों भावनाओं में आ जाए, लेकिन उमंग उत्साह की फीलिंग्स को हम जनरेट करें। जितने हमारे योग के समय, इसलिए बाबा कई बार कहते, ये देखो कि किससे मिलन मना रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो, है ना, ये फीलिंग्स को इमर्ज करो, उमंग उत्साह वाले फीलिंग्स को इमर्ज करो, खुशी की फीलिंग्स को इमर्ज करो। जब अफसोस या गिल्ट को लेकर के पुरानी बात हो, तो आपके अंदर कभी खुशी की फीलिंग्स जनरेट नहीं होंगी, उमंग उत्साह की फीलिंग्स जनरेट नहीं होंगी। और जहां फीलिंग्स नहीं जोड़ पाए हम, तो योग हमारा बेसिकली है ही फीलिंग्स के साथ में जुड़ा हुआ, मन और बुद्धि की एकाग्रता भी उस फीलिंग्स के बेसिस पर है। इसलिए जब तक भावनात्मक एकाग्रता नहीं आती है, ऐसी खुशी की पॉजिटिव प्योर फीलिंग्स को जनरेट करके देखो, फिर योग लगता है कि नहीं लगता है, है ना। और पांचवी एकाग्रता है, स्मृतियात्मक एकाग्रता, स्मृति स्वरूप, सो समर्थी स्वरूप, वो स्मृति स्वरूप को कितनी देर हम पकड़ के बैठ सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, वो स्मृति को, जो सर्वश्रेष्ठ स्मृति हो, जो मन को लक्ष्य दिया, उस स्मृति को कितनी देर आप पकड़ के रख सकते हैं, एकाग्र होकर के उस स्मृति में कितनी देर आप बैठ सकते हैं। जब स्मृतियात्मक एकाग्रता होगी, यानी स्मृति स्वरूप हो जाएंगे, तो समर्थी आने लगेगी। और स्मृति स्वरूप हो जाना माना, गीता का लास्ट अध्याय, अर्जुन स्मृति स्वरूप हो गया, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो स्मृति स्वरूप होना, स्मृतियात्मक एकाग्रता को विकसित करना माना नष्ट मोहा, देह और देह की दुनिया और देह के संबंध हर चीजों से नष्ट मोहा सहज, और तब वो स्मृति स्वरूप होकर के उस स्वरूप में अपने मन को स्थित कर देना। उस स्मृति में जब अपने आप को स्टेबिलाइज कर देते हैं हम, आत्मिक स्मृति, सिंपल एग्जाम्पल, आत्मिक स्मृति में जब स्टेबिलाइज कर देते हैं, तो वो समर्थी, सातों गुणों की आत्मा की वो समर्थी आ जाती है, तो उसकी बाहर की दुनिया से डिटैचमेंट, नष्ट मोहा सहज है। नहीं तो मन को भटकाने वाले, मन को खींचने वाले कोई न कोई संबंध ही निमित्त बनते हैं, चाहे प्रिय संबंध हो या अप्रिय संबंध हो। किसी के साथ अगर अनबन भी हो गई, तो वो व्यक्ति भी बार बार याद आता रहता है, तो वो हमारी स्मृति को भंग कर रहा है, स्मृति स्वरूप होने नहीं दे रहा है। इसलिए जगदीश भाई का एक क्लास मुझे याद आता है कि किसी ने जगदीश भाई को पूछा था कि योग की गहराई क्या होती है, तो जगदीश भाई ने कहा कि योग की गहराई को अनुभव करने के लिए योग की लंबाई, योग की चौड़ाई और योग की ऊंचाई को समझो, तब योग की गहराई को अनुभव कर सकेंगे। तो योग की चौड़ाई क्या है? तो योग की चौड़ाई है कि कितने संबंध है हमारे बाबा के साथ, वो चौड़ाई है। जो संबंध से आप सारे दिन में अलग अलग संबंध लेकर के याद कर सकते, कितनी चौड़ाई है इसकी। जो संबंध आपको प्रिय लगे, कभी कौन सा संबंध जोड़ा, कभी कौन सा ये चौड़ाई है। फिर योग की लंबाई, कि उस संबंध में कितना लंबा पीरियड तक, कितना लंबा समय, आधा घंटा, पौना घंटा, उस संबंध का अनुभव में, उस स्मृति के अंदर आप स्थित हो सकते हैं। ये लंबाई कितनी है ये देखो। इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं बहुत काल का अभ्यास चाहिए। बहुत काल माना हमारा बहुत काल कितना है? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कितना है? कितनी देर योग में बैठने के बाद हमें उबासी आती है? कितनी देर योग में बैठने के बाद थोड़ा सुस्ती महसूस हुई? ये देखो लंबाई क्या है। तो चौड़ाई अगर है तो लंबाई ज्यादा होगी। चौड़ाई कम है, खाली एक माता पिता का संबंध लेकर रोज याद करेंगे तो लंबाई कितनी होगी? कम होती जाएगी। और फिर योग की ऊंचाई माना कितनी ऊंची स्थिति में पहुंच सकते हैं? सूक्ष्म वतन तक पहुंचते हैं, परम धाम तक कितना ऊंचाई पर जा सकते हैं, और उस ऊंचाई में कितना लंबाई तक रह सकते हैं? जब ये तीन होगा तो गहराई यानी उस एकाग्रता पूर्ण अभ्यास या तपस्या करना आसान हो जाएगा। तो ये है एकाग्रता और तपस्या। ठीक है? ठीक है? लगन, लगन तो तभी हो गया ना, तभी तो कहा लगन माना क्या? प्यार ही है। स्मृति आत्मक एकाग्रता का ना, आत्मिक स्मृति। चलो सिर्फ आत्मिक स्मृति ले लो आप, कि मैं आत्मिक स्मृति में बैठी हूं। तो फिर सामर्थ्य क्या है आत्मिक स्मृति की? सातों गुण से भरपूर, आत्मा के सातों गुण से भरपूर होना, ये फील होना, सातों गुणों को अनुभव करना, जैसे मुझ आत्मा में से वो गुणों का ओवरफ्लो हो रहा है, ऊर्जा उसकी ओवरफ्लो हो रही है, ये है उसकी सामर्थ्य स्वरूप। और ये सामर्थ्य आ गई, उसको महसूस किया, अनुभव किया या उसको फील किया तो नष्ट मोह, तो उस समय आपको कोई दैहिक संबंध खींच नहीं सकते हैं। तो नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा, तो स्मृतिर्लब्धा तब बनते हैं जब नष्ट मोह है, या स्मृतिर्लब्धा बने तो नष्ट मोह बनना आसान है, दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। ठीक है? चलो, थैंक यू, ओम शांति।
एक हाथ की ताली से अपनी खुशी जाहिर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद उषा बहन जी ने हम सबको, क्या कहा, बूढ़े नहीं हो। अभी अभी सुन रही थी तो दादी जानकी की बात याद आई। अभी दादी जी का जब 100 वर्ष मनाया गया, बहुत बड़ा महोत्सव मनाया, दादी शिवमणि गई तो दादी ने कहा जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी न तब मैं यहां आऊंगी। इसका मतलब क्या है? तो हम अपने संकल्प से ही कमजोर होते हैं, बार बार साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ते हैं ना, मैं कमजोर हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं बीमार हूँ, बीमार हूँ, डॉक्टर्स भी हमें यही कहते, तो मैं बूढ़ी हूँ, हमें यही नहीं सोचना है। ड्रामा की भी बहुत सुंदर गहराई उषा बहन ने बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे अभी सुना कि सर्व संबंधों से जितना हमारी बाबा के साथ संबंधों की चौड़ाई अच्छी होगी तो योग की गहराई भी अच्छी होगी। आज सुबह आपको बताया था बाबा को सर संबंधों से आपको पत्र लिखना, आज लिखा, वैसे तो लिखा होगा अपने अपने हिसाब से, आज शाम को 4:30 से लेके 5 बजे तक आप लोगों को बाबा को जरूर पत्र लिखना है।
कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था।